ओम शांति। आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी मंदा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप मूल रूप से ईस्ट अफ्रीका से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 21 वर्ष की आयु में आपने लंदन में यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद ईश्वरीय सेवाओं अर्थ स्वयं दादी जानकी जी ने आपका चयन किया। न सिर्फ चयन किया लेकिन व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग भी आपको जानकी दादी ने दी। ऑक्सफोर्ड में जो ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है, GRC जिसे कहते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के समय से ही आपकी वहाँ सेवाएं आरंभ हो गई। कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट पूरा संभाला और जब बनकर तैयार हुआ 1993 में उसकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया, लीड किया, जहाँ हर वर्ष लगभग देश विदेश के 10,000 भाई बहने आकर लाभ लेते हैं और 40 नेशनल और इंटरनेशनल रिट्रीट होती है। लेकिन आप सभी को पता है कि बहुत हेरिटेज बिल्डिंग होने के कारण फिर उसको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ी, तो 30 साल तक तो आपने उसका कोऑर्डिनेशन देखा और फिर जब इसकी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ी और अभी रिपेयर होकर तैयार है, तो आपने अपने आप को पहले पूरे 30 साल तक आपने एडमिन लेवल पर आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही। लेकिन अब दादी जानकी के जाने के बाद 2021 से आपने एडमिन लेवल की सेवाओं से अपने को न्यारा कर दिया है और अब स्पिरिचुअल एम्बेसडर के रूप में पूरे विश्व भर में ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक सत्यों तक सत्यों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और उसी कारण से आज हमारे बीच में है। यहाँ 4-5 दिन रुके हैं और उसके बाद आप सिंगापुर, फिलीपींस आदि सेवाओं अर्थ जाने वाले हैं, तो हमें फायदा मिल गया आपका। तो आज के दिन जैसे कहा कि उन्होंने अपने आप रोल का बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, अवश्य ही लाइफ में चैलेंजेस अपने आप स्वीकार किए हैं, तो बहुत ही सटीक टॉपिक है आज इनके लिए। परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहने की विधि, इस पर प्रकाश डालेंगे अपने अनुभवों के आधार से। आदरणीय मंदा दीदी जी,
ओम शांति। बहुत लंबा चौड़ा परिचय दे दिया इंदिरा बहन ने तो, लेकिन हम हमेशा समझते हैं कि सच्चा परिचय तो अपना जीवन, अपनी धारणा और अपना व्यवहार होता है। ये तो आपने सिर्फ शब्दों का परिचय सुना लेकिन उसको सच्चा परिचय नहीं कह सकते। ये है सुपरफिशियल, राइट? उसमें भी खास स्थूल रूप में जो हम करते हैं वो किस लिए करते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले तो करते हैं अपने आप को ही बिजी रखने के लिए करते हैं, ताकि हमारा ही भाग्य बने करते हैं, ताकि हम भगवान के कार्य में अपनी उंगली दे सकें। जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा के सिवाय कोई भी निस्वार्थ नहीं है। सच बात है ना? भले जानबूझ के हम कुछ इसका रिटर्न नहीं मांगे लेकिन हमें पता है कि हम जो भी करेंगे उसका फल हमें मिलने ही वाला है। तो एक तरफ निस्वार्थ नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, हम सब जानते हैं, इसलिए हमेशा इस बात की बहुत ही ध्यान रहता है कि हम जो करते हैं अपने लिए करते हैं, तो इसमें कोई महिमा की बात नहीं है। अगर उसमें सफलता भी होती है तो सफलता हमने लाई क्या? हम जब बाबा के पास आए, इंदिरा बहन ने बताया 21 साल की उम्र में हमने निर्णय लिया, ज्ञान लिया था 19 साल की उम्र में, हमारी माताजी ज्ञान में आई थी। तो आप सबको पता है अपनी इंडियन माताएं तो कैसी होती हैं, माताएं अगर कुछ लेंगी, कुछ करेंगी, कुछ फायदा होगा तो बच्चों जबरदस्ती बच्चों को ज्ञान सुनना ही है। तो हमने जबरदस्ती सुना 19 साल में। फिर 2 साल लगे सोचने में, देखने में, और फिर हमने 21 साल की उम्र में निर्णय किया, वो भी मधुबन में आके। और फिर उसी समय दादी जानकी की भी नजर पड़ी, तो उस समय से दादी की नजर कभी हटी नहीं, और दादी ने हमेशा नजर नहीं हटी माना, दृष्टि ऐसी दी कि हम कभी अपने आप को भूल न सकें, हम कौन हैं, पर्सनली, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली हम कौन हैं, किसके हैं, क्या करना है, क्यों करना है। एक बारी बाबा के बन गए तो ये बातें भूल नहीं सकती हैं। तो इसीलिए परीक्षाएं आएंगी तो क्या करेंगे, तो क्या होगा। मैं सोच रही थी कि स्थूल रूप में, यानी कि बच्चे जब छोटे हैं या स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं तो उनकी परीक्षा का समय फिक्स होता है, उनका पढ़ाई का करिकुलम भी फिक्स होता है, इस साल की उम्र में या इस साल की पढ़ाई में ये सब्जेक्ट कवर करने हैं और ये बातें सीखनी हैं, और उस अनुसार उनकी परीक्षा होंगी साल के अंत में, और वो भी डेट टाइम सब कुछ फिक्स। और हमारे लिए हमारा करिकुलम क्या है, हमारे विषय क्या हैं, और ऐसे भी नहीं कि जो छोटे हैं उनके थोड़े विषय हल्के हैं और जब बड़े होंगे तो फिर उनका विषय कुछ और गहराई वाला होगा, ये भी नहीं। हमारे लिए टाइम भी फिक्स नहीं, किसी को पता है आपका अगला एग्जाम परीक्षा कब आने वाली है, किसको पता है, जिसको पता है हाथ उठाएं कि हमारी परीक्षा इस दिन इस समय पर इस रूप में आने वाली है, किसको पता है। यहां से बाहर जाके भी सीढ़ी उतरते समय भी परीक्षा आ सकती है, आ सकती है ना, पांव खिसक गया, गिर गए, चोट लग गई तो क्या हुआ, परीक्षा आ गई ना, चोट लग गई, हाथ टूट गया, पांव टूट गया तो परीक्षा आ गई। तो अजीब की बात है वास्तव में। वैसे देखा जाए तो बाबा ने हमें जो सिखाया है, जो हमारे लिए टाइम टेबल बनाया है, जो हमारे लिए शिक्षाएं बाबा ने दी है, वो शिक्षाएं पर अगर हम चलेंगे तो कॉन्स्टेंटली सदा के लिए हमारी तैयारी चलती रहती है। वैसे स्कूल में भी बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना, तब उनको पाठ पढ़ाया जाता है, किताबें मिलती हैं, नोटबुक मिलती हैं, उसको प्रश्न उत्तर मिलते हैं स्कूल के अंदर। फिर बच्चे भूल जाते हैं, उनको बाहर जब खेलने जाते हैं तो ये नहीं समझते हैं कि हमारी ये पढ़ाई है। और हमारे लिए ऐसे थोड़ी है कि जब क्लास में आए तभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो कितना समय पढ़ाई करेंगे, आधा घंटा, घंटा पढ़ाई करेंगे, एक घंटा पढ़ाई करेंगे, और फिर रेस्ट ऑफ द 24 आवर्स 23 आवर्स, सारा समय हमारी पढ़ाई चल रही है, एक सेकंड भी हम सोच नहीं सकते हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं है। हमारी जीवन यात्रा ही हमारे लिए एक पाठशाला है, एक स्कूल है, जिस स्कूल में हम ऐसी किताबें लेकर ही नहीं पढ़ते हैं, जो देखा, जो सुना, जो बोला, जो स्मृति आई, उसको देख के, उसको चेक करके सदा के लिए हमारी पढ़ाई रहती है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि क्या आता है, जब हमको ये स्मृति रहती है कि हमारा जीवन ही पढ़ाई का जीवन है, तो एक प्रकार की जागृति आती है। There is an awakening, स्मृति कहो, जागृति कहो, अवेयरनेस कहो, हमारे जीवन में ये स्मृति बनी रहे, जागृति रहे, अलर्टनेस जिसको कहते हैं। अलर्ट ये नहीं सोया उठा तो अलर्ट हो गए, एक आंतरिक अंदर की आत्मिक अलर्टनेस। ये प्रकार की अलर्टनेस से हमें हर बात में सीखने को मिलता है, और इस अलर्टनेस, ये अलर्टनेस को पैदा करने के लिए, इसको बनाने के लिए, उसको बना के रखने के लिए बाबा ने हमें बहुत ही अच्छा टाइम टेबल दिया है। बाबा ने हमें डिसिप्लिन बना के दी है। जिस डिसिप्लिन को फॉलो करने से हम अपने आप ये जागृति अपने आप में बना के रख सकते हैं। तो एक तो है हमारा टाइम टेबल जो अमृत वेला का है। बाबा कहते हैं अगर अमृत वेला हमारा ठीक हुआ तो सारा दिन हमारा ठीक रहेगा। सबसे पहले परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए हमारा ध्यान हो। मैं इसलिए सुना रही हूं कि परीक्षा को गुड साइन समझना और उससे हर्षित रहना, हर्षित ऊपर ऊपर से हर्षित नहीं रह सकते हैं। बाबा ने कहा और हम समझे कि ये परीक्षा आई है, हमको तो हर्षित रहना है, और हम फिर वो क्या कहेंगे, प्रटेंड करेंगे, हंस रहे हैं, सबको कोई सब कुछ अच्छा है, कोई हर्जा नहीं है, ये क्या कहेंगे इसको, फॉल्स, गलत कहो या फॉल्स या ऊपर ऊपर का हंसना कहेंगे, बनावटी, दैट्स अ गुड वर्ड, ये बनावटी हंसना कहेंगे। ये बनावटी हंसने से हमें परीक्षा को पास करने की शक्ति नहीं आएगी, और ही हम अपने आप को धोखा देंगे। हम समझते हैं कि हम ठीक है, हमारी तो परीक्षा है, लेकिन हम तो हंसते हैं, हम ठीक है। इस प्रकार से हम अपने आप को धोखा दे देंगे। तो ये हर्षितपना ऐसा नहीं है कि ऊपर से ही हर्षित रहना, हर्षित रहना है लेकिन अंदर से वो अगर पुरुषार्थ चलता है, हमारा अटेंशन है, हमारा ध्यान है, हमारी स्मृति है कि ये परीक्षा है, मुझे पता है कि ये बड़ी बात है, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे को किस प्रकार से इसको देखना है, ये स्मृति हम बना के रखेंगे तो फिर हर्षित रह सकते हैं। वो हंसना या मुस्कुराना बनावटी नहीं होगा, और ही हमें शक्ति मिलेगी। वैसे भी कहा जाता है, आप सबको पता होगा कि अगर हम स्माइल करते हैं तो उसमें फेशियल मसल्स कम जाते हैं, लेकिन अगर चेहरा मोटा है, थोड़ा फुला के रखा है, तो उसमें चेहरे का मसल्स ज्यादा जाता है, उसमें एनर्जी ज्यादा जाती है, आंतरिक एनर्जी सूजे हुए चेहरे में ज्यादा जाती है, क्योंकि उसकी असर न सिर्फ चेहरे पर है लेकिन दिल पर है, मन पर है, अपने अंदर की सुख की फीलिंग पर है। तो वो एनर्जी हमारी बहुत जाती है। इसलिए बाबा जब कहते हैं हर्षित मुख रहो, लेकिन हर्षित जान के, पहचान के, समझ के हर्षित रहना है। ऊपर ऊपर से नहीं, बनावटी नहीं। और बनावटी होगा ना तो औरों को सब पता चल जाएगा। कई बार हम देखते हैं हमारे अंदर से कुछ गलत संकल्प है या फीलिंग्स है, लेकिन हम दिखावे से ऊपर के ऊपर से अच्छा लगा, अच्छा रख रहे हैं, पता चल जाता है किसी को, सबको पता चल जाता है, तो उसमें सच्चाई नहीं रहती है। फिर दादी जानकी को सच्चाई बहुत अच्छी लगती थी, और आप देखेंगे उसके लिए दादी के बहुत सारे क्लासेस भी हैं। हमारे में सच्चाई कैसे हो? सच्चाई सिर्फ ये नहीं है कि सच्चा मुख से बोलना। अगर हमारी परीक्षा भी है, परीक्षा भी चल रही है, हम परीक्षा से पार हो रहे हैं, उसके अंदर हैं और मुश्किलात हैं, लेकिन ये भी नहीं कि हमें शब्दों में सबको बताना है। सच्चाई माना ये नहीं हम सबको बताएं हमारे तो ये मुश्किलात है, ये है, क्या करें, क्या बताएं आपको, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई है अपने आप से देखना, उसको स्वीकार करना और उसको परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करना, ये है सच्चाई। हम दादी गुलजार को हमेशा पूछते थे, रेगुलरली पूछते थे, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो आजकल? तो दादी कहती थी, दादी गुलजार खास, वैसे सभी दादियों के लिए, लेकिन दादी गुलजार खास खास कहती थी, मैं अपने आप पर अटेंशन दे रही हूं। और उस समय, ये 10-15 साल पहले की बात है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि दादी क्या कह रही है, अटेंशन देना माना क्या। इतनी बड़ी दादी, इतने समय से बाबा के पास है, इतना पुरुषार्थ किया हुआ है, फिर भी आज कहती है हमें पुरुषार्थ में अटेंशन रखना है। हमें समझ में नहीं आता था, अभी समझ में आता है। अटेंशन माना भले आंखें कुछ और देख रही हैं, लेकिन अपनी स्मृति क्या है उसके ऊपर ध्यान। मैं क्या सोच रही हूं, मैं क्या फील कर रही हूं, मैं अभी व्यवहार करूंगी तो इस व्यवहार का रिजल्ट क्या होगा, हम सबको पता है। एक्चुअली हम सबको पता है, जो भी हम करते हैं ना उसका रिजल्ट हम सबको पता है, एडवांस में पता है। उसके लिए चाहिए सारी कुछ सेकंड्स की साइलेंस। तो अंदर से वो अटेंशन से शक्ति भरी हुई होती है। तो परीक्षाएं आएंगी, परीक्षा आते समय हमें तुरंत पता चले, हमारा ध्यान जाए, ये है मेरे लिए परीक्षा। और परीक्षा जरूरी है। लौकिक स्टूडेंट्स को एक परीक्षा, जैसे बताया ना, करिकुलम होता है, सब्जेक्ट्स होता है, लेवल्स होती हैं, उस लेवल अनुसार परीक्षा होगी, फिर उसको पार करेंगे, फिर दूसरे लेवल पर जाएंगे, तो दूसरे लेवल की पढ़ाई, फिर वो उस परीक्षा भी उस लेवल की होगी, फिर आगे बढ़ेंगे तो उस लेवल की परीक्षा होगी। तो हमारे लिए भी लेवल्स हैं परीक्षा के, क्योंकि परीक्षा में पास होंगे, कोई भी परीक्षा आई, चलो तनकी आई, बीमारी आई, या तो हम रोते माथा मारते रहेंगे इसके बारे में, ये आया अभी क्या करे, तो जाता ही नहीं है, ये परीक्षा आई, लेकिन उसका वर्णन करते रहना, औरों को बताते रहना, अपने आप के लिए जैसे कि हम सॉरी समझना कि ये मेरा क्या नसीब फूटा हुआ है, मुझे ये हुआ, ये परीक्षा पास करना नहीं हुआ, ये और ही परिस्थिति में लिप्त हो जाना हुआ। अगर हम इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं तो हमारे शक्ति नहीं, हमारे में शक्ति नहीं है उससे थोड़ा न्यारा होने की, और न्यारा होकर उसको देखना कि आई है बीमारी, आई है दवाई लेनी है, वो भी करना है। लेकिन आप सबने ये कैलकुलेशन भी सुना होगा, दादी कहती थी कि बीमारी आती है तो 45% हमको दुआएं की जरूरत है उस समय, 50% योग की शक्ति की जरूरियात है, 5% मेडिकेशन काम करेगी। उस समय अगर हम सिर्फ गोलियां खाने के लिए ही सोचेंगे और हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, उससे काम नहीं होगा। अगर बीमारी के समय भी हर्षित रहना है तो उसके लिए तैयारी 45% दुआएं, राइट? दुआएं तुरंत नहीं मिल जाती है, दुआएं के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, किसी को सुख देना पड़ता है, किसी की सेवा करनी पड़ती है, करनी पड़ती नहीं है, करनी है, सेवा देनी है, सुख देना है। जब कि कुछ समय के लिए बहुत काल से इस प्रकार की हमने मेहनत की हुई है, तब हम समझ सकते हैं बीमारी के समय कि हमको दुआएं हैं, और जो बात की जिस प्रकार से हमको जरूरत होगी ना, वो बात वो चीज हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास दुआओं का खजाना इकट्ठा हुआ हुआ है। तो उस समय फिर हम हर्षित रह सकते हैं। विधि चाहिए ना परीक्षा के समय हर्षित रहने की, सिर्फ होठों को ऐसे लंबा करने की विधि नहीं है, राइट? दुआएं इकट्ठी की हुई हैं, दुआओं की गठरी टाइट बनाई हुई हैं, तो अब हम हल्के रह सकते हैं। और हमारे सामने सब तैयार हो गए सेवा करने के लिए हमारी, हमें संकोच भी नहीं आएगा, हमको बोझ भी नहीं लगेगा। इसी प्रकार से योग, योग की शक्ति भी, जैसे कहते हैं ना, अगर तंदुरुस्ती हमें चाहिए तबीयत की, तो ऐसे नहीं जो खाया जब मन पसंद, जो चाहे तला हुआ भी खाओ या खट्टा भी खाओ, शुगर है मीठा भी खाओ, सब कुछ करो और फिर समझो हम तंदुरुस्त रहेंगे, हो सकता है? परहेज रखनी पड़ेगी ना, परहेज रखनी पड़ेगी। परहेज रखेंगे तो पहले से बीमारी नहीं आएगी, राइट? वैसे कहते हैं कि अगर आपको हमारी तबीयत को तंदुरुस्त रखनी है, सो यू शुड ईट हेल्थी फूड, हेल्थी खाना खाना चाहिए, रेगुलर खाना चाहिए। और हमारे लिए तो बाबा की याद में बनाया हुआ खाना खाना चाहिए। बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन स्वीकार करेंगे तो न सिर्फ तन को लेकिन मन को भी शक्ति मिलेगी। वैसे स्थूल रूप में कहते हैं एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करेंगे तो भी तंदुरुस्त रहेंगे। फ्रेश एयर चाहिए, फ्रेश हवा लेंगे तो भी तंदुरुस्त रहेंगे। और बात कहते हैं नींद भी अच्छी करनी चाहिए। ये सब बातें हमें अपने जीवन में रखनी पड़ेगी अगर हमें तंदुरुस्त रहना है तो। अगर हमको शारीरिक परीक्षा नहीं पास करनी है या नहीं लानी है तो ये सब तैयारी हो, और जब आएगी भी, चलो कमजोरी आ भी गई कुछ न कुछ कारण से, लेकिन अंदर से जो शक्ति भरी हुई है ना, तो जल्दी हम रिकवर कर लेंगे। हमने देखा, हमको कोविड हुआ था 2 साल पहले यहां मधुबन में ही, वेरी सिवियर, कई लोग तो कहते हैं हम शरीर छोड़ने वाले थे, लेकिन हमको ऐसी फीलिंग नहीं थी कि हम शरीर छोड़ेंगे। लेकिन थोड़ी सी कमजोरी, एक्चुअली सच पूछो तो मैं समझती हूं मेरे को कोविड हो गया क्योंकि थोड़ी मन की कमजोरी आ गई। कमजोरी इस बात में कि कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोला, तो उसमें से हमने बैड फीलिंग्स ले ली कि इसने ऐसे क्यों किया हमारे साथ, ये कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, तो उसका दुख ले लिया। मुझे अभी तक याद है थोड़ा जुकाम शुरू हो गया और जुकाम फिर थोड़ा बढ़ने लगा। और मुझे याद है मैंने जयंती बहन को बोला, कुछ प्रोग्राम था यहां मैं नहीं जा सकी, तो मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पता है क्यों तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे मन में ये मैंने दुख ले लिया ना, तो बहुत बड़ी परीक्षा आ गई, बहुत बड़ी जबरदस्त परीक्षा आ गई। तो कमजोरी परीक्षा लाने वाले भी हम बनते हैं, तो इसलिए तैयारी तबीयत के लिए परीक्षा ना आए। आए तो भी मुझे याद है उस समय श्वास की भी तकलीफ थी, सब कुछ था, लेकिन मुझे एक ही शंका, मुझे ये नहीं था क्यों ये हुआ मेरे को, ये मेरा कसूर है, ऐसे कोई संकल्प नहीं था, एक ही संकल्प था, जैसे कि बाबा उस समय एक ही संकल्प दे रहा है, कुछ नहीं सोचो, सिर्फ गहराई से श्वास लो, बस ओनली दैट, और कोई संकल्प नहीं था। 4, 5, 10 दिन एक्चुअली चला, 15 दिन चला, क्योंकि पहले 5 दिन नीचे ट्रोमा में ट्रीटमेंट किया तो भी ठीक नहीं हुआ, फिर हॉस्पिटल में जाना हुआ, तो इतने दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, 10-12 दिन कोई संकल्प नहीं चला, सिर्फ यही कीप ब्रीदिंग। उससे बहुत ही शक्ति मिली, तो मेरे लिए तो सूली से कांटा हो गया, लेकिन देखने वालों के लिए सूली से कांटा नहीं था, उनको तो था ये तो कितनी बीमार हो गई, लेकिन मेरे लिए सूली से कांटा था, क्योंकि मैंने पहले से अपने आप को कैच कर लिया। तो तैयारी करना तन से, मन से, मन में भी कौन सा पुरुषार्थ करेंगे, व्यर्थ संकल्प के तो पहाड़ आ जाते हैं, कुछ किसी ने किया, चलो सच किया, गलत किया, कुछ भी हो, झूठ है या सच है, कोई भी बात हो, लेकिन हमारा काम है क्या इस समय, एक्चुअली देखा जाए तो सच और झूठ दोनों टू एक्सट्रीम्स। अगर हम समझेंगे ना कि ये तो बहुत सच है तो भी हमारे संकल्प चलेंगे, हम समझेंगे बहुत झूठ है तो भी हमारे संकल्प चलेंगे, लेकिन हमारा काम क्या है, ये न्यूट्रल रहना, जो नो द हिंदी वर्ड फॉर न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल रहना। सच है तो बाबा जानते हैं, गलत है तो भी बाबा जानते हैं, मेरे को सच और गलत को देख के जजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं जजमेंट करूंगी तो क्या होगा, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, मैं सच बोलने वाले के लिए उसकी तरफ ले लूंगी, वो भी गलत हो जाएगा। बाबा कोई तरफ लेते हैं कभी? बाबा झूठ की भी तरफ नहीं लेते हैं, गलत सच की भी तरफ नहीं लेते हैं, क्योंकि भगवान कौन है, भगवान एक शक्ति है जो गलत करने वाले हैं उनको सच्चाई का अनुभव कराना, भगवान वो है जो सच करता है उसको अभिमान भी ना आए, वो भी उसको देखना है। तो अगर हमें अपने मन को व्यर्थ संकल्प से बचाना है तो हमारा अभ्यास क्या हो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प भी एक बीमारी है, व्यर्थ संकल्प भी कैसे, वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ऐसे है ना, कीड़े मकोड़े को आने में टाइम नहीं लगता है, और आएंगे तो कैसे आएंगे, झुंड का झुंड आएगा, राइट। तो व्यर्थ संकल्प को भी नहीं आने देना पहले से ही, ऐसे नहीं कीड़े मकोड़े के समान आ जाए फिर उसको खत्म करने में हम बहुत सारा टाइम चला जाए। तो पहले से उसके लिए अभ्यास चाहिए, बिंदी बन के रहना, संकल्प में बिंदी लगाना, कोई भी बात हो, किसी की भी बात हो, देख के क्या हमारे बुद्धि में आया, देख क्या हमारे वाणी में आया, आएगा तो फिर संकल्प चले होंगे, हो ही नहीं सकता है कि बिना संकल्प चले आया ही नहीं हो। एक्चुअली चाहे मन की कहो, तन की कहो, संबंध की कमजोरी इससे पैदा होती है, व्यर्थ संकल्प। और हमारा एक्चुअली देखा जाए, हमारे को परीक्षा क्यों आती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव लक्ष्मी नारायण बनना वो तो है ही, चलो वो भी बाद में होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य है कर्मातीत बनना। कर्म से अतीत, कर्म के प्रभाव से अतीत हमें बनना है। तो सबसे पहले कर्म का बीज है संकल्प। कर्म, हम कर्म कितने भी अच्छे करते रहे यहां पे, लेकिन ये बीज जो अगर नहीं बदला है, श्रेष्ठ संकल्प का बीज नहीं है, तो व्यर्थ संकल्प का बीज क्या करेगा, व्यर्थ ही पैदा करेगा। स्थूल रूप में मेहनत करते रहेंगे, कारोबार में बिजी रहते रहेंगे, लेकिन इतना सारा करते हुए भी अपने आप को खाली ही समझेंगे, खाली ही फील करेंगे। तो इतनी मेहनत करते हुए भी जब परीक्षा आएगी ना, तो कमजोरी रहेगी। और परीक्षा में कोई भी परिस्थिति भी आती है ना, परीक्षा की परिस्थिति, तो हमको चाहिए बुद्धि की क्लैरिटी। व्यर्थ संकल्प में बुद्धि की क्लैरिटी नहीं आती है, बुद्धि जैसे कोई फॉगी जैसे हो जाती है। और फॉगी क्यों, क्या, कैसे, किसने, कब, फुल स्टॉप। कोई भी बात आई, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ऐसा कि हम अपने रूप में भी चले जाए, लेकिन बाबा की शक्ति का आवाहन। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। बाबा को याद करने से हमारे संकल्प जैसे के हवा में उड़ जाते हैं। बाबा को याद करने से ही बाबा की शक्ति। और बाबा को कैसे याद करते हैं, एक्चुअली बाबा ने एक बार ये कहा था कि बिंदी को याद करना मुश्किल है। बाबा ने यह भी कहा था कि बिंदी को याद नहीं कर सकते हैं, बिंदु को कैसे याद करेंगे, लेकिन बिंदी की जो शक्ति है, उसकी एनर्जी जो है, उसके वाइब्रेशन है, उसके गुण का फैलाव जो है, और हमें कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को रोक के उसको अपनी फीलिंग्स में लाना है। आजकल साइंस में भी कहते हैं कि अगर आपको कोई दुख का अनुभव होगा ना, तो जल्दी याद रह जाएगा आपको। अभी भी आपको कहे ना कि 10 बातें बताओ आपको जो दुख देती है, वो आप फटाफट लिस्ट बना देंगे, और वो दुख फिर अपने अंदर घर कर लेता है। उसको छोड़ना, उसको भूलना, उसमें फिर टाइम चाहिए। लेकिन सुख का अनुभव कहो या खुशी का कोई अनुभव हुआ, वो अनुभव भी अगर होता है ना, तो नोटिस करना चाहिए, ये अनुभव ऐसा रहा और उससे मुझे ये फायदा हुआ। They say 30 seconds. आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए उस अनुभव को थोड़ा अंदर से गहराई से उसको देखना है और अनुभव में लाना है, फील करना है, तो वो अनुभव अपने अंदर घर करेगा। नहीं तो जो खुशी के अनुभव होते हैं वो जल्दी हम भूल जाते हैं। तो वो हर्षितपना कब रहेगा? जब हमने अपने खुशी का स्टॉक जमा किया हुआ है। और वास्तव में देखा जाए उसमें खास क्लास में भी, हमको क्लास में आते हुए अभी कितने 42 साल हो गए, आज भी क्लास में बैठते हैं तो रेगुलरली ये फीलिंग आती है कि इस जैसा कुछ है ही नहीं। बाबा के क्लास में बैठना, बाबा के बच्चों के साथ बैठना, बैठ के याद बाबा की याद करना, उसकी जो फीलिंग है, ये जो वातावरण है, रोज उसको नोटिस करें, ध्यान जाए उसमें। और उसको सिर्फ दिमाग से बुद्धि में, दिल में बिठाएं, की शक्ति फिर बढ़ती है। ये जो जागृत पने की बात मैंने बताई ना शुरू में, इन सब बातों से अंदर से वो जागृति आती है, वो अलर्टनेस हमेशा के लिए रहती है। और हमारा देखने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका अपने आप बाबा की बातों से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव बाबा की बातों के प्रभाव में रहता है। आप सभी यहां क्यों आए हो? क्यों आए हो भट्टी करने के लिए? ताकि बाबा की बातों का प्रभाव आपके अंदर बैठे और यहां से फिर घर जाओ तो वो प्रभाव बना रहे। लेकिन बना रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रिवाइज करना, फिर उसको अंडरलाइन करना, उसको बढ़ाना। फिर तो तन का हिसाब किताब आएगा, मन का हिसाब किताब आएगा, संबंध का भी आता है। और संबंध हमें कभी धोखा न दे, संबंध का धोखा वो भी एक परीक्षा है ना। बहुत सारी इसमें तो बिजनेस में आ सकती हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी आ सकती हैं, ज्यादा आती है ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ज्यादा आती हैं। तो उसमें फिर चाहिए सच्चाई की तैयारी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। सच्चाई माना जो बात जैसी हो। आजकल तो कहा जाता है इन इंग्लिश दे से क्लैरिटी इज काइंड, यानी कि संबंध में स्पष्टीकरण हो। कुछ सोचा, किसी ने कुछ किया, हमारे संकल्प चले, फिर संकल्प चलते रहे, फिर हम कुछ कहेंगे नहीं, फिर चलो भूल जाएंगे, लेकिन वो जो अंदर से फीलिंग है ना, वो फीलिंग नहीं जाएगी कि उसने ये किया था, वो फीलिंग नहीं जाती है, वो फीलिंग अंदर घर करके बैठ जाती है। तो फिर वो संबंध में भारीपना आ जाता है, वो भारीपना आ जाता है, फिर इतना भारी हो जाता है, फिर उससे बात करने का ही दिल नहीं करता है। ऐसे होता है ना। तो ये भारीपना ना आए संबंध में। सबसे पहले ये जो बात कुछ टक्कर की हो गई, ये आई परीक्षा, उसको हम समझते हैं कि परीक्षा आई। ओम शांति। फिर बाबा की याद में, बाबा के ऊपर, ड्रामा के ऊपर छोड़ के अपने आप को साफ रखना। दिस इज द थिंग, बीइंग क्लियर इज बीइंग काइंड। कोई भी कारोबार की भी बात है, कारोबार में भी हमने देखा दादी से, दादी हमें कुछ काम करने के लिए देंगी ना, काम माना सेवा, लेकिन कुछ कार्य करने के लिए देंगी ना, तो दादी कहेगी ये करना है, आप ये करेंगी तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा. सो यू नो कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन. हमारे में क्या दादी एक्सपेक्ट करती हैं तो हमारी फिर बुद्धि इस तरफ से चलेगी. ऐसे नहीं काम सौंप दिया, एक्सपेक्टेशन है लेकिन एक्सपेक्टेशन क्लियरली बताया नहीं क्या है, क्लियरली बताया नहीं और कैसे उसको मदद करने के लिए भी कैसे करना है ये भी नहीं बताया, तो फिर वो बेचारा भारी हो जाता है. भारी हो जाएगा फिर काम ठीक नहीं होगा तो फिर हमारे हमें बोलेंगे कुसुच को. सॉरी एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं लेकिन एग्जाम्पल मैं सोचती हूँ फिर बताऊंगी. कोई बात ऐसी बुद्धि में आएंगी तो कई बातें हैं. जैसे बताया ना कि वैसे जो इंट्रोडक्शन में इंदिरा बहन ने बताया जो कंस्ट्रक्शन की बात थी वो तो दूसरा मकान था, और जो हमारा बाबा का ये रिट्रीट सेंटर है वो 250 साल पुराना मकान है, वो अलग है. वो जो कंस्ट्रक्शन वाली बात थी वो दूसरा मकान है. एनीवे दादी ने हमें ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में बिठाया, निमित्त बनाया और दादी ने बोल दिया अभी तुमको ये संभालना है, इसको इसके पांव पर खड़ा करना है. लेकिन दादी ने बताया मैं हमेशा हूं यहां, कोई भी मदद तुमको चाहिए मेरे पास आ सकती हो कभी भी. और हमने प्रैक्टिकली देखा दादी ने हमें ये बड़ी सेवा दे दी, लेकिन हमेशा फीलिंग रही कि दादी हमारे साथ हैं. अगर कोई बात भी ऐसी होती थी ना, चमचो कोई बात ऐसी हो गई उसका निवारण करना है, तो कुछ बात ऐसी होती है जिसका निवारण हो सकता है, इनसे बात करो ये करो इनके इनके पास जाओ ये करो, बात का निवारण हो जाता है. कोई बात ऐसी होती है जिसका निवारण ऐसे नहीं कर सकते हो, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट बट यू हैव टू एंगेज योर माइंड एंड योर हार्ट. आपको इंतजार करना है सही घड़ी के लिए, उस समय आपको उसके आपके लिए कोई आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको अपने मन को और समय को तैयार करना है ताकि उसका निवारण हो. तो हमें दादी से फीलिंग आती थी कि दादी ये कर रही हैं इस घड़ी पर, इस समय पर दादी बैठी हैं, दादी को पता है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन दादी के पास सोल्यूशन कोई नहीं है अभी, बट शी नोज, वो जानती हैं, बट एंड शी इज अलर्ट, देख रही हैं. बाबा को याद करेंगी, हमको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगी या सामने वाली दूसरी व्यक्ति को एक्स्ट्रा टाइम देंगी. तो ये एंगेजमेंट जिसको कहते हैं, ये भी एक तैयारी है अपने जीवन में सच्चाई बनी रहे. तो इसलिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, दादी जो कहे आधी रात को भी कहे तो हम तैयार थे. तैयार क्यों थे? क्योंकि हमको साथ साथ शक्ति भी दादी कार्य करने के लिए देती थी. लेकिन अपना योग करना, अपनी अवस्था संभालना, वो किसका काम है? वो दादी का काम है क्या? नहीं, वो हमारा काम. अगर वो हम मिस कर देंगे तो जब परीक्षा आएंगी तो फिर हम नहीं संभाल सकेंगे. तो इसी प्रकार से तन से मन से धन से, धन से भी हिसाब किताब आ सकता है. कभी भी जो था वो चला गया तो ऐसे थोड़ी कहेगी अभी के बाबा के बने तो सब दिवाला हो गया, नहीं. लेकिन पहले से अगर हमने धन को भी, दारी का एक स्लोगन हमें हमेशा याद रहता था, धन के बारे में तो क्या लेकिन हर बात में, जो बात जो चीज कहो, वस्तु कहो, संबंध कहो, धन कहो, जो आपके पास है उसको सफल करेंगे तो वो सदा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा. अगर व्यर्थ गवाएंगे तो जब आपको जरूरत है तब आपके पास नहीं होगा. This is a very deep philosophy. अपनी तैयारी करके अपने भविष्य को बनाना, it's a philosophy. आध्यात्मिक philosophy. ऐसी वैसी philosophy, ये दुनियावी ही philosophy नहीं है. रूहानी मशीनरी है. तैयारी है तो समय पर सब कुछ अपने आप होगा. तो धन की भी बात, हमारी भविष्य की तैयारी क्या, हमने धन को सफल किया. सफल करना ये भी नहीं, चलो सारा यज्ञ को साइन करके दे दो, ये भी बाबा नहीं कहते हैं. बाबा ने ये कभी नहीं कहा जो है वो साइन करके यज्ञ को दे दो, ये नहीं कहा. लेकिन जो है उसको बाबा का समझ के चलो. खाते हैं तो कौन खिला रहा है, पहनते हैं तो कौन पहना रहा है. दादी को हम देखते थे, दादी क्लास में, क्लास के पहले दादी के पास जाएंगे ना तो दादी तैयार होती थी, बता बड़े ठेस से तैयार होती थी और नशा रहता था क्लास में. रोज के क्लास की बात करती हूँ. दादी को नशा रहता था कि मैं किसके क्लास में जा रही हूँ और किसकी वाणी सुनाने जा रही हूँ और किसको सुनाने जा रही हूँ. ये इस प्रकार से हम स्मृति बना के रखेंगे तो इस जागृति से, इस नशे से हर्षित हर्षित है. परीक्षा आएगी तो जैसे कि परीक्षा आई, कैसे चली गई पता भी नहीं चलेगा. अव्यक्त बाप दादा जब आते थे ना तो दादी के पास जाते थे तो दादी परफ्यूम डालेंगी ऐसे, जैसे कि कुछ बाल बनाएंगी. बाल कुछ खास नहीं, लेकिन किसको मिलने जा रही हूं, अपना सेम सफेद कपड़ा, ऐसे कुछ खास नहीं. तो इसलिए वैसे परीक्षा हम बाबा के बच्चों के लिए इट्स एन एक्सपेक्टेशन, तैयारी रहो कि परीक्षा आएगी ही. ड्रामा का भी कोई भरोसा नहीं है आजकल. देखो द स्पीड ऑफ टाइम, टाइम एक ड्रामा है. टाइम की स्पीड बढ़ रही है ना, लगता है ना ऐसे कि टाइम कितना फास्ट जाता है. घड़ी तो वही है, वही 24 घंटे वाली घड़ी है, तो क्यों लगता है टाइम बहुत फास्ट जा रहा है. क्योंकि सारी बातें जो होती है, जो भी हमको दिखाई नहीं देता है कि कैसे फास्ट जा रहा है, कैसे स्पीड बढ़ रही है. सोचना करना, सोचना बोलना, बोलना करना. मशीनरी भी आजकल ऐसी है, बटन दबाओ सब कुछ हो जाता है. जिस स्पीड से हम कार्य करते हैं उस स्पीड से समय आगे बढ़ता है. और टेक्नोलॉजी कहो, साइंस कहो, जो भी कहो, उन सब से भी स्पीड बहुत जल्दी आगे जा रही है. लेकिन आप 24 घंटा वही हैं, लेकिन एक एक घड़ी जो हमारे से पास हो रही है ना, हम यहां ऑलरेडी 50 मिनट से 50 मिनट से बैठे हैं, लेकिन वो सेकंड बाय सेकंड ड्रामा जा रहा है. उस ड्रामा के अंदर हमारा मन कहां तक उसको उसके साथ साथ चल रहा है. ऐसे नहीं परिस्थिति आ जाए चली जाए, पता भी नहीं चले क्या हुआ कैसे हुआ, वहां कुछ हो रहा है, वहां कुछ हो रहा है, लेकिन हमको पता भी नहीं है. उसमें डिटेल की बात नहीं है. बाबा कहते हैं जब योग युक्त है ना तो युक्ति युक्त है. और पहले से हमको पता चल जाता है क्या होने वाला है. तो परीक्षा जब आने वाली हो ना, अगर योग युक्त है तो एडवांस में पता चल जाता है. कुछ अभी चलो एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता हो, लेकिन वो फीलिंग आएंगे कुछ गड़बड़ है, तैयार रहना है, सावधान रहना है. सच्ची सच्ची तैयारी ये है कुछ होने वाला है, पता नहीं है कुछ क्या होने वाला, लेकिन हमें पता है हमको अंदर से शांत रहना है, योग युक्त रहना है, गहराई में रहना है, सूक्ष्मता में रहना है, तब जो सब सामने बात आएंगी ना, तो हम उसको सही रीति से सामना कर सकेंगे। तो अभी 5 मिनट हैं, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? आदत, तैयारी नहीं है ना। बहन पूछ रही है कि बिंदी लगाने की बात निकली तो फुल स्टॉप लगाना है, और हमको पता है कि ये बात है, हम बिंदी लगाने जाते हैं लेकिन लाइन ही हो जाती है, तो क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है ना, हाथ ही हो जाता है, अभ्यास नहीं है। फुल स्टॉप लगाने का कम सोचने का, कम सोचना, धीरे सोचना, धीरे माना स्पीड स्लो हो। हमारा तो सालों से पुरुषार्थ इस बात में होता है क्योंकि स्पीड की बहुत आदत है। तो धीरे सोचना, कम सोचना, और ये अभ्यास मैं आजकल कर रही हूं, कोई एक ही संकल्प करना और उस संकल्प के वाइब्रेशन में जाना, उस संकल्प की एनर्जी। संकल्प एक एनर्जी है, साधारण चीज नहीं है। आप अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छी एनर्जी है, बुरा सोचेंगे तो बुरी एनर्जी है, नो क्वेश्चन, एब्सोल्युटली। सेकंड की बात है, कोई एक गलत संकल्प किया, फिर रुको, गो इनसाइड, कौन सी फीलिंग है? फीलिंग अच्छी होगी नहीं होगी, एक ही संकल्प। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक संकल्प के बाद बहुत सारे आ जाते हैं। फीलिंग रहती है क्योंकि पहले संकल्प था, एक समय था जब संकल्प था तब फीलिंग। इतनी फास्ट है, इतनी सूक्ष्म मशीनरी है वो फीलिंग जो है ना, वो बहुत समय से सेम संकल्प जो किया हुआ है ना, उसकी एनर्जी पैदा होके घर कर बैठी है। सिचुएशन की फीलिंग अंदर बैठी हुई है, तो उसको बदलने के लिए भी तो संकल्प ही करना पड़ेगा ना, बदलना पड़ेगा। तो वो फीलिंग को बदलने के लिए अच्छे संकल्प के वाइब्रेशन उस फीलिंग को बदलेंगे। लेकिन कहने का मतलब है, इट्स वेरी सटल, बहुत ही सूक्ष्म है। हम कहां कितने बारी दिन में रुकते हैं अपने आप को चेक करने के लिए, हमारे वाइब्रेशन क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, किस दृष्टि से मैं देख रही हूं और क्या फीलिंग है। दिस इज अटेंशन। और क्या होगा, अपने आप इस प्रकार का अटेंशन होगा ना, तो अपने आप सोचना भी कम हो जाएगा और फीलिंग भी साफ रहेगी। क्योंकि हमने जो सीखना है ना उस परिस्थिति से वो नहीं सीखा है, इसलिए वो घड़ी घड़ी आती है और जोर से आती है। जब तक हम सीखेंगे नहीं ना, जो हमें सीखना है, प्रश्न ये था कि सेम परिस्थिति आती रहती है और हम उसको रोकना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, या आई फिर पूरी हो गई फिर दोबारा आती है और जोर से आती है, क्योंकि वो परिस्थिति आती है हमें कुछ सिखाने के लिए और हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। हम देख रहे हैं बाहर मुक्ता से, किसी को ब्लेम कर रहे हैं, किसी का कसूर निकाल रहे हैं और सोच रहे कि चली जाए, हमारे पास क्यों आई है। हमारे पास आई है कुछ हमको सिखाने के लिए। हम सीख लेंगे पाठ तो वो दोबारा नहीं आएगी। गुड साइन है, गुड साइन ये है। लेकिन दिस एस्पेक्ट ऑफ एक्चुअली जो भी हमारे सामने आता है ना, हमने खुद लाया है, हमने खुद लाया है, हमारे विचारधारा से, हमारे संकल्प से, हमारी इच्छाओं से। अगर हम एक मिनट आपकी बात, अगर हम ये भी सोचने तो हमको बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करना है, हमें ये बनना है, वो बनना है, ये भी संकल्प करेंगे ना, अच्छे संकल्प हैं, तो वहां ले जाएंगे कैसे अपने आप को? वहां ले जाएंगे तब जब ये सब बातें सामने हैं, उसको पार करेंगे ना। श्रेष्ठता जब तब आएंगी जब कमजोरियां कहो या जो भी नेगेटिव बातें हैं उसको, असाधारणता है, उसको खत्म करेंगे तब तो श्रेष्ठता आएगी। तो हमारा श्रेष्ठ संकल्प करना ही, बाबा कह रहे माया को चैलेंज करना है, हमने चैलेंज दी है तब परिस्थिति आती है। और उसमें भी अपने आप को परिवर्तन की जो चैलेंज है ना, इसका मतलब है अंदर जो भी है उसको हम चैलेंज करें तो वो आएंगी, लेकिन कभी कभी हम थोड़ा भूल जाते हैं। एक मिनट, वहां बहन ने हाथ उठाया था। मन की स्पीड को बढ़ाना नहीं, वो एक्चुअली हम ड्रामा के साथ अलाइन तब हो सकेंगे, यानी कि हम ड्रामा के पट्टे पर तब चलेंगे जब हमारे मन की स्पीड स्लो होगी। भले ड्रामा कितना भी फास्ट होता है, जैसे बताया ना, ये घड़ियां थोड़ी बदल गई है, 24 की 24 ही घंटी है, वही स्पीड से जाती हैं। आवर परसेप्शन ऑफ ड्रामा इज बिकमिंग फास्ट। टाइम फ्लाई। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, यानी कि कुछ भी बात है किसमें, हाँ ज्यादा क्या, वो भी तो फिर वो करने से पता चलता है ना कितनी क्लैरिटी करनी है कितनी नहीं करनी है, या ईगो के वजह से क्लैरिटी होती नहीं। चलो अभी बहुत सारे प्रश्न भी हो गए। बहुत बहुत थैंक्स आप सबको। हाँ दूसरे नहीं समझते हैं क्योंकि वो कैसे समझेंगे, वो तो आप, वो उनकी धारणा की भी बात है नहीं। हाँ, और क्या समझते हैं वो हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, सोचना है, वही हमें सोचना है। या ओके चलो ओवरे, ओ वाह वाह बहुत सारे। ऑक्सफर्ड के भाई पूछ रहे हैं कि ऑक्सफर्ड के बारे में कुछ बताओ, तो वैसे 250 साल पुराना है, आप कईयों ने तो सुना होगा, लेकिन ये मकान वो जो पुराने जमाने में बनाते थे ना, स्टोन के बनाते थे, पत्थर के बनाते थे, ऐसा है। और ये हेरिटेज बिल्डिंग है, यानी कि इंग्लिश हेरिटेज, यानी पुराने जमाने के जो होते हैं ना उसको जैसे कि अपना शान समझते हैं, इस प्रकार का बिल्डिंग है। तो वो है बिल्डिंग पुराना, लेकिन उसकी जो पाइप वर्क कहो, प्लानिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सब पुरानी हो गई थी, तो उसको बदलना था। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि बिल्डिंग जो है जैसा ही, आपको वापस उसको रख देना है। तो जो पाइप वर्क डालने के लिए जो खोलो, आप दीवारों को खोलो, छत को खोलो, उसको वापस जैसा था ऐसा ही रख देना। तो वैसे बहुत बड़ा काम निकला, 5 साल चला और खर्चा भी बहुत हुआ, लेकिन बाबा ने सब कुछ कर लिया। 10 मिलियन पाउंड्स का खर्चा हुआ, पाउंड्स हाँ। लेकिन सोचा नहीं था इतना बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा हुआ। 5 साल बंद रहा, तो अभी इस साल हमने शुरू किया है। तो अभी ब्रिजमोहन भाई जी आएंगे और मोहिनी दीदी भी आएंगे, और जुलाई मास में हमारा ओपनिंग का प्रोग्राम है। वैसे तो हमने यूज करना शुरू कर दिया है, रिट्रीट शुरू कर दी है, लेकिन ऑफिशियल ओपनिंग जुलाई में होगा। ओके ओम शांति। हाँ भाई चलो सुना लो, हमने तो आपको ये सब बातें बताई, ये अपने पुरुषार्थ की ही बातें बताई। विशेष पुरुषार्थ देखते हुए नहीं देखना, ये हमारा पुरुषार्थ है। न्यारा और प्यारा बना, अभी तो प्यारा बनने की तो बात बाद में, लेकिन अभी तो न्यारा बनने का भी पुरुषार्थ चल रहा है। क्योंकि हमें हमारा हमारी आदत है जो बात एकदम जैसे के डिटेल में देखना, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें देखते हुए नहीं देखना। और जो है हो रहा है, जैसे हो रहा है, जो कर रहा है अच्छा है।
दिल में लगन अब
अवश्य ही सभी ने नुमा शाम का योग पावरफुल किया होगा और पावरफुल टिप्स मिली होगी हर्षित रहने के लिए। मंदा दीदी का एक हाथ हिलाकर शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।